आज है अगस्त महीने की 4 तारीख, दिन रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। चरमपंथी हमले की आशंका और सरकार की ओर से अलर्ट जारी होने के बाद भारत प्रशासित कश्मीर में अफरा तफरी और अनिश्चितता की स्थिति।
जब से हमने ये सुना, फिर से हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है। हालात खराब होते हैं तो आप खुद समझ सकते हो बच्चों का क्या हो सकता है। फिर
आखिर क्यों पैदा हुए ये हालात और क्या है इसके मायने और क्या है सरकार की मंशा?
अमरनाथ यात्रा को लेके अब ये बोल रहे हैं वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, तो इन्होंने एडमिट कर लिया है कि इनका होल्ड ही नहीं है सिक्योरिटी सिचुएशन पे। शक ऐसा पैदा होता है कि स्पेशल स्टेटस जो स्टेट का है इसमें कहीं हेर फेर होगी।
T20 मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, नवीन नेगी से। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की ओर से पर्यटकों को घाटी छोड़ने के आदेश जारी करने के बाद से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कश्मीर में मौजूद पर्यटक और अमरनाथ यात्रा में शामिल तीर्थयात्री घाटी छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिसे देखते हुए राज्य के प्रमुख नेताओं ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती केवल सुरक्षा कारणों से की जा रही है। भारत की तरफ से कल दावा किया गया कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक अग्रिम चौकी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने कम से कम 5 से 7 घुसपैठियों को मारने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के इस दावे को गलत बताया है। वहीं पाकिस्तान ने भारत पर नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है, जिसमें 2 लोगों की मौत और 11 लोगों को घायल होने की बात कही गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय सेना ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जो जिनेवा संधि का उल्लंघन है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज किया है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक शॉपिंग मॉल में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि टेक्सास के एल पासो इलाके में स्थित सीएलओ विस्ता मॉल में गोलीबारी हुई। यह जगह अमेरिका मैक्सिको सीमा से कुछ ही मील की दूरी पर है। पुलिस ने इस गोलीबारी की घटना के लिए एक गोरे व्यक्ति को हिरासत में लिया है, साथ ही लोगों से घटनास्थल से दूर रहने का आदेश दिया है। पुलिस के प्रवक्ता सार्जेंट रॉबर्ट गोमेज ने पत्रकारों को अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा,
Right now we're clearing all the location. This is a very large area, including the mall, all the retail areas. We are going through, making sure that anybody that.
फिलहाल हम पूरे इलाके को खाली करवा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा इलाका है जहां कई मॉल हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं कोई शख्स कहीं छिपकर तो नहीं बैठा हुआ है। हम घायलों को तलाश रहे हैं और उन्हें अस्पताल भी भेज रहे हैं। ये थे पुलिस प्रवक्ता के शब्द। रूस की राजधानी मॉस्को में पुलिस ने भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। ये प्रदर्शनकारी आगामी स्थानीय चुनावों में कई विपक्षी नेताओं को बाहर करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। एक निगरानी समूह ने बताया है कि पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें प्रमुख विपक्षी नेता युबोव सोबोल भी शामिल हैं। हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप लोगों ने हेलमेट क्यों पहने हुए हैं? आप किससे डर रहे हैं? मैं शांति से बैठी हूँ। क्या मैं कोई खतरनाक अपराधी हूँ? आपको अपने ही नागरिकों से डर लग रहा है? आपको मुझसे डर लग रहा है? एक ऐसी लड़की से जिसकी भूख हड़ताल का यह 21वां दिन चल रहा है। ये थे रूस में प्रमुख विपक्षी नेता युबोव सोबोल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। हांगकांग में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छिटपुट झड़प होने की खबरें सामने आई हैं। शनिवार रात सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कोवलून इलाके में स्थित पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की और कुछ जगहों पर आग भी लगाई। इसके जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस का प्रयोग किया, साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। इराक की राजधानी बगदाद में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है। बगदाद में एक पुलिस स्टेशन से ड्रग्स की तस्करी से जुड़े 15 अभियुक्त भागने में कामयाब रहे थे। एक सूत्र ने बताया कि इन अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला किया था। इस घटना के बाद बगदाद पुलिस और पुलिस विभाग के प्रमुखों को उनके पदों से हटाया गया है। इराक में ड्रग्स तस्करी का व्यापार तेजी से फैल रहा है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा। नमस्कार, भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत आज कश्मीर घाटी से। भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर सरहद के दोनों तरफ फिजा अचानक बदल गई है। क्या आम और क्या खास, थोड़ा बहुत हर कोई परेशान है। सुनिए भारत प्रशासित कश्मीर में आम लोग क्या कह रहे हैं।
मेरा नाम हुमैरा फिरदौस है। हमने सुना कि 15 अगस्त के बाद यहाँ पे वो कुछ आर्टिकल है वो तोड़ देंगे, तो वही उसी की वजह से हमारा टूरिज्म का बिजनेस है। अब पहला सीजन है, जब से हमने ये सुना हमें बहुत ही ज़्यादा फील हुआ कि अब फिर से हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है। और एजुकेशन का भी, बच्चों का भी सोचना पड़ता है। हालात खराब होते हैं तो आप खुद समझ सकते हो बच्चों का क्या हो सकता है। फिर हमें लगा कि ये अफवाह है, लेकिन जब लाया गया है फौज को तो ऐसे तो नहीं लाएंगे ना, कुछ तो होगा ना।
मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। हिंदुस्तान की तरफ से जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट्स और यात्रियों को निकाला गया और कुछ लोग जो यहाँ पे अपने कामकाज के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल आज एक इमोशनल सीन देखने को मिला। वो रो रहे थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी का मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है। चैनी है अभी, लोगों को लगता है कुछ होने वाला है और ऐसा हो भी सकता है। हो सकता है कि हिंदुस्तानी एजेंसीज अब वो ना करें यहाँ की बेचैनी देख के।
श्रीनगर से ये आवाज़ें भेजी हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने। इसी तरह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आम लोग थोड़ा डरे सहमे हैं।
मैं गुलशन मनास मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। कश्मीर के आजकल के जो हालात स्पेशली पिछले दो दिन से भारतीय मकबूजा कश्मीर में तो सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन है थोड़ी ज़हनी टेंशन है अवाम में कि कुछ होने वाला है।
नाम नज़र हुसैन कियानी। हमने भी यही सुना है कि हालात ख़राब हैं। हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारा तो यूँ ही सिस्टम चल रहा है। ये जो रोज़ रोज़ की ये जो टक टक लगी हुई है, टक टक लगी हुई है, कम कम हर तरफ देखें इंसान ही मर रहे हैं ना।
पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से ये आवाज़ें आप तक पहुंचाई स्थानीय पत्रकार औरंगजेब जर्राल ने। भारतीय सेना की ओर से ये कहने के बाद कि पाकिस्तान से चरमपंथी कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को तुरंत वापस जाने का परामर्श दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में खलबली मच गई। गुलमर्ग, सोनमर्ग और अन्य जगहों से देसी विदेशी पर्यटक अपना सामान पैक करके किसी भी तरह कश्मीर घाटी से निकल जाने की जल्दबाजी में नजर आए। पर्यटकों की वापसी से होटल अचानक खाली होने लगे और स्थानीय लोग भी अपने लिए रोजमर्रा की जरूरी चीजें जमा करते नजर आए। इसके अलावा एटीएम और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं। इस घटनाक्रम के बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल और बयानबाजी शुरू हो गई। ज्यादा जानकारी बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़ की रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र सरकार को संसद में इस बात का जवाब देना चाहिए कि कश्मीर में तनाव की स्थिति क्यों है।
370 को लेके बात हो रही है, डिलिमिटेशन को लेके बात हो रही है, और कल तो बहुत ही ज्यादा ट्राइफर्केशन को लेके लोग परेशान थे। गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इन तमाम मामलों में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मंडे को पार्लियामेंट लगते ही मरकज के तरफ से भी एक ऐसा बयान आ जाए जिसके तहत हम समझ पाए कि कल का ये जो ऑर्डर था यात्रा खत्म करने का और टूरिस्टों को यहाँ से निकालने का, इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घाटी के हालात पर चिंता जताई। अमरनाथ यात्रा को रोकने के दिशा निर्देशों की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ऐसे हालात पहले कभी पैदा नहीं हुए।
पूरा राष्ट्र, पूरा देश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग डरे हुए हैं कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो वापस अपने घरों को लौट के आए कश्मीर से। किसी ने ये एडवाइजरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एडवाइजरी कभी नहीं गई कि टूरिस्ट वापस आए और यात्री यात्रा को कटेल करके, कम करके वापस अपने अपने राज्यों में आए।
इससे पहले शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि वो घाटी में ऐसा खौफ देख रही हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एक तरफ जहां कांग्रेस और घाटी के क्षेत्रीय दल कश्मीर के हालात को 1990 के दशक जैसा बता रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। शनिवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से बयान आया कि उन्हें किसी भी संवैधानिक प्रावधान में बदलाव की खबर नहीं है। राजभवन की ओर से जानकारी दी गई कि अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती केवल सुरक्षा कारणों के चलते की गई है, लेकिन राज्यपाल का ये आश्वासन न तो घाटी के लोगों को राहत दे पाया और न ही राजनीतिक दलों को। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि न तो केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है और न ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कश्मीर में पैदा हुए हालात पर कोई प्रतिक्रिया आई है। आदर्श राठौर, बीबीसी, दिल्ली।
श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर का मानना है कि कश्मीर घाटी में इस समय ऐतिहासिक अनिश्चितता बनी हुई है और उन्होंने घाटी में ऐसे हालात, इतने सुरक्षा बल उस समय भी नहीं देखे जब कारगिल का युद्ध हो रहा था। श्रीनगर की आंखों देखी, सुनिए रियाज मसरूर की जुबानी।
कल जो ये एडवाइजरी जब शुरू हुई तो उस वक्त ऐसा पैनिक मच गया, लोग ये प्रिज्यूम कर रहे थे कि जो कुछ भी होना है और जिस तरह का मिलिट्री एक्शन से रिस्पांस के खिलाफ होना है उससे एक दो महीने के लिए कश्मीर बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसलिए कल पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी, लड़ाई झगड़े हुए, लॉन्ड ऑर्डर सिचुएशन भी हुई। लोग जो है एक तो गाड़ी में पेट्रोल भर रहे थे, उसके बाद वो 30-30 लीटर के जो प्लास्टिक कैन है उसमें भी पेट्रोल ले जा रहे थे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, मतलब हर जगह भीड़ थी। ATMs में कैश कल खाली हो गया इस अनाउंसमेंट के ढाई घंटे के बाद। पूरी तरह से एक हाहाकार मची हुई थी। अब चूंकि उस एडवाइजरी में ये भी बताया गया था कि जो लोग यात्री यहाँ हैं या पर्यटक यहाँ हैं उनको निकलना है, तो जाहिर है आज सुबह भी जो है बहुत ज्यादा संख्या में लोग निकल रहे थे। NIT के अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया था बसेस को जाना, वहां से स्टूडेंट्स निकल रहे थे। जो लोग बाय रोड जाना चाहते हैं वो रोड जा रहे थे, तो इसलिए रोड्स पे जैम था। जो लोग बाय एयर जाना चाहते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट पे भी मतलब काफी ज्यादा संख्या में लोग जमा है। वहां चूंकि इस एयरपोर्ट को आदत नहीं है इतना ज्यादा रश टैकल करने की जितना कि हुआ, क्योंकि सब जब आप गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आए और उस ऑर्डर में लिखा था इमीडिएटली, तो लोगों को भी समझ आ गया कि कोई बड़ा खतरा है। और उससे पहले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि बहुत बड़े हथियार मिले हैं, पाकिस्तान यहाँ टेंशन स्टोक करना चाहता है, तो इस बगदड़ में सब लोग भाग गए। तो इसमें चक्कर ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं जिन्हें कहीं नहीं जाना है उनके लिए दो चैलेंजेस थे। एक तो ये था कि अगर एक दो महीने के लिए बंद हो गया तो उनकी दवाइयाँ, उनके एसेंशियल खाने पीने का सामान एक तो वो खरीदना है, दूसरी तरफ से ये उनका मानसिक चैलेंज है कि अपने बच्चों को या घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको कैसे ये दिलासा दिया जाए कि आज रात ठीक गुजरेगी, कल कुछ नहीं होगा। तो जब से ये टेंशन हुई है तब से हर रात कश्मीरी के लिए ऐसे होती है कि उनको लगता है कि आज रात में कुछ होगा तो कल से हमारी खैर नहीं, कल से हालात खराब हो जाएंगे। तो एक तरह से एक बहुत हिस्टोरिकल अनसर्टेंटी है।
जी, आप लंबे समय से नजर रख रहे हैं, कवर कर रहे हैं और आपने कई बड़े टेंस मोमेंट्स भी देखे, कोई दौर ऐसे देखे, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बहुत ही गंभीर सिचुएशन है?
मैं कहूंगा कि सीधे सीधे बाकायदा जंग हुई थी कारगिल में 1999 में। उस वक्त भी ऐसी स्थिति या ऐसा डर या ऐसा खौफ नहीं था। लोग टीवी पे जंग देखते थे या मतलब हम जैसे लोग तो कारगिल जाके वहां रिपोर्ट करते थे गोलाबारी को, लेकिन जिस तरह का आज माहौल है, दंदना रही है फोर्सेस, मतलब इतनी फोर्सेस को बुला रखा है कि यहाँ जगह ही नहीं है उनको अकोमोडेट करने की। ऑफिसर्स परेशान है, रात 9-9:30 तक ऑफिसर्स ऑफिस में होते हैं, तो समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ से यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि वो बराबर संपर्क में है नई दिल्ली के साथ, किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, सिर्फ एक टेरर थ्रेट है जिसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और यात्रियों को खतरा था इसलिए उनको वापस भेजा गया, क्योंकि अगर कहीं अनहोनी कोई हो जाती, छोटी सी भी हिंसक घटना घटती तो देश भर में बवाल मच जाता, इसलिए उस चीज को बचाने के लिए यात्रा को जो है कर्टेल किया गया और उनको वापस भेजा गया। लेकिन जिस तरह का ये माहौल है, जिस तरह की ये तैयारी है, न तो कोई बता रहा है दिल्ली से करना क्या है, न यहाँ का प्रशासन बोल रहा है कि क्या बात है, लेकिन जिस तरह की तैयारी है उससे जाहिर है एक आम छोटी सी कम से कम अकल रखने वाला बंदा भी ये कहेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर, उनसे बात कर रहे थे आदर्श राठौर। कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात पर कांग्रेस का कहना है कि ये वैसे ही हालात हैं जैसे 1990 के दशक में हुआ करते थे, जब घाटी में चरमपंथ और सैन्य कार्रवाई दोनों चरम पर पहुंच गए थे। तब और अब के हालात और उसके मायनों को समझने के लिए आदर्श राठौर ने श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन से बात की।
जो ये बिल्डअप जिस तरह का हो रहा है, जिस तरह की कंफ्यूजन है, एक इसकी सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस जो है
वो तब से है जब जगमोहन ने टेक ओवर किया था एडमिनिस्ट्रेशन एज अ गवर्नर इन 1990, और उसके बाद जो हुआ वो वेल डॉक्यूमेंटेड है. मतलब जिस तरह से नॉन मुस्लिम्स को बोला जा रहा है वहां से निकलें, ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज रही है पिछले 30 साल में. और उसके बाद जितने वो मैसेकर्स हुए और क्रैकडाउन हुआ, दैट इज वेल डॉक्यूमेंटेड कश्मीर. तो उस वजह से दूसरा नई चीज ये है कि उस वक्त मिलिटेंसी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी. इस वक्त तो ये खुद बोल रहे हैं कई महीनों से कि मिलिटेंसी हमने पूरी सफाया कर दिया है, खत्म कर दिया है. तो ये उससे शक ऐसा पैदा होता है कि डिजाइन्स जो हैं वो और ज्यादा सिनिस्टर हैं. सिर्फ क्रैकडाउन ही नहीं होगा, कहीं स्पेशल स्टेटस जो स्टेट का है या उसका जो पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, उसमें कहीं टेम्परिंग होगी, उसमें कहीं हेर फेर होगी. दूसरी चीज है, हमें अमरनाथ यात्रा को लेके अब ये बोल रहे हैं वहां पे इनसिक्योरिटी. इसका मतलब तो इन्होंने एडमिट कर लिया है कि इनका होल्ड ही नहीं है, ग्रिप ही नहीं है सिक्योरिटी सिचुएशन पे. दे आर अनएबल टू मैनेज.
वहाँ पे तनावग्रस्त तो इलाका रहा ही है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा गया लंबे समय से जैसा अभी है.
आज तक 30 साल में कभी भी अमरनाथ यात्रा डिस्टर्ब नहीं हुई है, कहीं पे उसको रोका नहीं गया है, कभी कैंसिल नहीं हुई है. दिस इज द फर्स्ट टाइम. एंड इससे पहले कई थ्रेट्स आ चुके हैं, इससे पहले कई मुश्किल दौर आ चुके हैं. 90 के दशक में हरकत उल अंसर एक ग्रुप था जिन्होंने डायरेक्टली यात्रा को अटैक करने का थ्रेट किया था. उसके बाद पिछले कुछ सालों में देख लें तो समर एजिटेशन चलती रही, 2008 में चली, 2010 में, 2016 का इतना बुरा दौर था, लेकिन उस टाइम पे भी साथ साथ यात्रा चलती रही, बिल्कुल उसमें अड़चन नहीं आए. तो ये नई डेवलपमेंट से जो पैनिक राइज हो रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कंफ्यूजन इसलिए भी क्रिएट हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन है, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट है, एंड गवर्नमेंट इज नॉट क्लैरिफाइंग. गवर्नर बिलेटेडली क्लैरिफाई करते हैं, बोलते हैं ये र्यूमर्स ना सुने, ये सब गलत है. अगर सब गलत है, क्या ये जो सरकारी ऑर्डर्स हैं वो भी गलत है? वो भी क्या र्यूमर मॉन्गरिंग है? तो देर इज नॉट मच क्लैरिफिकेशन टू रीअश्योर पीपल.
ये थी वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन, जो कह रही थी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लोगों में भरोसा पैदा होता. और आइए लगे हाथ दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियां जान लेते हैं. नवीन, अखबारों के पहले पन्ने क्या कह रहे हैं आज?
जी संदीप जी, दिल्ली से प्रकाशित तमाम समाचार पत्रों में आज भारत प्रशासित कश्मीर में जो तनाव का माहौल बना हुआ है उसी को सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है. इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि घाटी में किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा. कई कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, छात्र हॉस्टलों से जो है अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं. इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि पर्यटक कश्मीर को छोड़ रहे हैं. अखबार लिखता है कि ऐसी जानकारियां मिल रही थी कि अमरनाथ यात्रा पर खतरा हो सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने पर्यटकों की तस्वीर प्रकाशित की है जो गाड़ियों में बैठकर कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग अखबारों में हैं. इंडियन एक्सप्रेस में एक तस्वीर है जिसमें डल झील पर नाव में बैठे हुए जो पर्यटक हैं वो अपना सामान रख रहे हैं और जा रहे हैं कश्मीर से बाहर. और जनसत्ता ने जानकारी दी है कि पर्यटकों को निकालने के लिए वायुसेना के वे विशेष विमान तैनात किए गए हैं, और ये खबर भी इस अखबार के पहले पन्ने पर है. और अगर संदीप जी हम कश्मीर में जो वहाँ के अखबार हैं और वहाँ की जो वेबसाइटें हैं वहाँ किस तरह की खबरें प्रकाशित हुई हैं तो उन पर नज़र डालें, तो वहाँ भी इसी खबर से जुड़ी हुई तमाम अलग अलग पहलुओं पर नज़र डाली गई है. राइजिंग कश्मीर जो एक अखबार वहाँ से निकलता है कश्मीर का, वहाँ उसमें लिखा गया है कि जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि वे लोग कश्मीर ना जाएं. और NIT श्रीनगर जो है उसका कैंपस लगभग खाली हो चुका है, उसके छात्र कैंपस छोड़ के जा चुके हैं. और कश्मीर टाइम्स एक वेबसाइट है, उसने लिखा है कि घाटी में 28,000 अतिरिक्त सैन्य बलों को भेजा गया है. तो ये तमाम खबरें जो अखबारों में छाई हुई हैं कश्मीर से जुड़ी हुई खबरें हैं. दूसरी खबरों की तरफ जाएं तो उन्नाव दुष्कर्म मामला जो है उसकी जाँच के लिए अब CBI आ चुकी है, और उन्होंने कल सेंगर जो कुलदीप सेंगर हैं विधायक उनसे पूछताछ की जेल में जाके. और मेरे सामने अखबार रखा है दैनिक भास्कर जिसमें बताया गया है कि जो पीड़िता है उसको निमोनिया बताया गया है. और इसके साथ ही साथ एक भाजपा के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई से ही आशीष सिंह आशु, अखबार लिखता है कि उन्होंने कुलदीप सेंगर का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि वो मुश्किल वक्त में चल रहे हैं और जल्द ही जो है उनका सही वक्त आ जाएगा. ये खबर है, भाजपा ने हालांकि उनके इस बयान से खुद को अलग कर दिया है. दिल्ली में एम्स अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल का तीसरा दिन कल था, 3 दिन हो चुके हैं और लगभग कामकाज जो है सरकारी अस्पतालों में ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते 40,000 मरीज प्रभावित हैं और एम्स सफदरजंग का जो प्रशासन है उसने सख्त रवैया दिखाया डॉक्टरों से। उन्होंने कहा है कि अगर आप वापस काम पर नहीं लौटेंगे तो आप सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पर डॉक्टर भी अड़े हुए हैं, वे लगातार जो हैं कल जो दिल्ली के एक प्रमुख सड़क है रिंग रोड वहाँ पर उतर आए और वहाँ पर प्रदर्शन किया।
शुक्रिया नवीन। आज रविवार है और हर रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा। आलेख बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद का है, सुनिए अपूर्व कृष्ण की जुबानी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप प्रत्यारोप, कश्मीर पर मध्यस्थता करने की इच्छा संबंधी अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान और अफगान शांति प्रक्रिया से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारतीय सेना भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास आम नागरिकों पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है, जो जिनेवा संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अखबार जंग के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान जारी कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस बात की नोटिस लेनी चाहिए। अखबार के अनुसार कुरैशी का कहना था, भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है, भारत प्रशासित कश्मीर की सूरत हाल उनके हाथ से निकल चुकी है, भारत अब नया हादसा चाहता है जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया के सामने पाकिस्तान को निशाना बना सके। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अखबार एक्सप्रेस ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के एक ट्वीट का जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय सेना भारत प्रशासित कश्मीर में मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार करने की तैयारी कर रही है। अखबार के अनुसार ट्वीट में सैयद अली शाह गिलानी ने दुनिया भर के मुसलमानों से मदद की अपील की है। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार गिलानी के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी देशों के समूह OIC के महासचिव से संपर्क करने की घोषणा की है। कुरैशी OIC के महासचिव को कश्मीर घाटी की ताजा स्थिति से अवगत कराएंगे और आम कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए उनसे उचित कदम उठाने की अपील करेंगे। अखबार के अनुसार पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी इस ताजा घटनाक्रम के बारे में पत्र लिखकर बता चुका है। वहीं अखबार जंग के अनुसार पाकिस्तान में नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आग से खेल रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के सारे अखबारों ने ट्रंप के इस बयान को न सिर्फ पहले पन्ने पर जगह दी है बल्कि इस पर कई संपादकीय और विशेष कॉलम भी लिखे हैं। अखबार नवाए वक्त ने इस पर सुर्खी लगाई है, कश्मीर समस्या मध्यस्थता की पेशकश पर ट्रंप कायम, भारतीय हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान ने कहा अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। अखबार के अनुसार व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा नरेंद्र मोदी और इमरान खान मिलकर कश्मीर समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इस मसले को हल करने में कोई उनकी मदद करे तो मैं खुशी से इसके लिए तैयार हूं। लेकिन भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि कश्मीर मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफगान शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। अखबार दुनिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान मामले पर अमेरिका के विशेष दूत जल्मे खलीलजाद से मुलाकात की और उनको विश्वास दिलाया कि शांति प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हर संभव प्रयास करेगा। उधर ट्रंप ने भी कहा है कि वो अफगानिस्तान से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहते हैं। अखबार नवाए वक्त के अनुसार ट्रंप ने कहा कि अमरीका को ऐसी मूर्खता वाली जंग में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए।
ये थे अपूर्व कृष्ण जो बता रहे थे पाकिस्तान के अखबारों में पिछले दिनों क्या कुछ छपा। और अभी कुछ देर पहले आपने सुना पाकिस्तान ने भारत पर नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में क्लस्टर बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भारत ने इस आरोप का खंडन किया है। क्या होते हैं ये क्लस्टर बम और क्यों होते हैं बेहद खतरनाक, बता रही हैं हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी।
जिनेवा समझौते के तहत क्लस्टर बमों का उत्पादन और इस्तेमाल प्रतिबंधित है, मगर कई देशों और सेनाओं पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है। क्लस्टर बम खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बम से निकलने वाले कई छोटे विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे संघर्ष के दौरान आम नागरिकों को नुकसान पहुंचने की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, मुख्य बम के फटने के बाद आसपास गिरने वाले छोटे विस्फोटक लंबे समय तक निष्क्रिय पड़े रह सकते हैं। ऐसे में संघर्ष खत्म हो जाने के बाद भी इनमें धमाका होने की आशंका बनी रहती है, जिससे जानमाल का नुकसान होता है। क्लस्टर बम विरोधी सैनिकों को मारने या उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें लड़ाकू विमानों से गिराया या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। साल 2008 में डबलिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई, जिसके बाद क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। 2008 से ही संधि पर हस्ताक्षरों की शुरुआत हुई और अभी तक 108 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इसके अलावा 106 देशों ने इसे अपनाने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दी थी, लेकिन कई देशों ने इस संधि का विरोध भी किया था, जिनमें चीन, रूस, इसराइल और अमरीका के साथ भारत और पाकिस्तान भी शामिल थे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
क्लस्टर बमों के बारे में जानकारी दे रही थीं गुरप्रीत सैनी। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
हमारे पास 25 या 26 गेम है T20 वर्ल्ड कप आने से पहले, और ऐसा कोई भी मैच नहीं होता जो आप लाइटली लें। यही फोकस रहेगा अगले साल तक की जितने मैचेस हैं उनमें 15 अपनी बेस्ट 11 फिगर आउट करें।
ये कहना है भारत के कप्तान विराट कोहली का। और कल भारत ने वेस्ट इंडीज को फ्लोरिडा में खेले गए पहले 2020 मुकाबले में कभी लड़खड़ाते कभी संभलते हुए 4 विकेट से हरा दिया। भारत के सामने जीत के लिए केवल 96 रनों का लक्ष्य था, जो उसने रोहित शर्मा के 24, कप्तान विराट कोहली और मनीष पांडे के 19-19 और रविंद्र जडेजा के नाबाद 10 रन की मदद से 17.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज के शेल्डन कॉटरेल और सुनील नारायण के अलावा कीमो पॉल ने 2-2 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने की दावत पाकर वेस्ट इंडीज की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखाई दी। भुवनेश्वर कुमार और अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय 2020 मुकाबला खेल रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की धारदार गेंदों के सामने उसके बल्लेबाज निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर महज 95 रन बना सके। वो तो पोलार्ड ने 49 और निकोलस पूरन ने 20 रन बनाकर जैसे तैसे टीम को संभाला, वरना तो बाकी कोई भी बल्लेबाज दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचा। नवदीप सैनी ने 17 रन देकर 3 विकेट झटके, इसका इनाम उन्हें मैन ऑफ द मैच के रूप में मिला। वैसे विकेट को लेकर कप्तान विराट कोहली ने माना कि वहां टिकना मुश्किल था।
Days and I think they did a pretty good job to get the game started, but it was a sluggish pitch to be honest and bowlers were on top.
दोनों टीमें आज दूसरे मुकाबले में उतरेंगी, जहां भारत 3 मैचों की सीरीज को आज ही जीत के साथ अपने नाम करना चाहेगा। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज हार से सबक लेकर दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एजबस्टन में ऐसे सीरीज का पहला टेस्ट मैच दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है। कल खेल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 124 रन बनाए। पहली पारी में शानदार शतक जमाने वाले स्टीव स्मिथ 46 और ट्रेविस हेड 21 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 374 रन पर समाप्त हुई। उसे पहली पारी के आधार पर 90 रनों की बढ़त मिली।
कुछ ही देर के बाद भारत में बजेंगे सुबह के साथ। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की ओर से पर्यटकों को घाटी छोड़ने के आदेश जारी करने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विपक्ष ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक शॉपिंग मॉल में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने एक गोरे व्यक्ति को हिरासत में लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में पुलिस ने भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। ये प्रदर्शनकारी आगामी स्थानीय चुनाव में कई विपक्षी नेताओं को बाहर करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। हांगकांग में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छिटपुट झड़प होने की खबरें सामने आई हैं। शनिवार रात सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कोवलून इलाके में स्थित पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की। इराक की राजधानी बगदाद में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया है। बगदाद में एक पुलिस स्टेशन से ड्रग्स की तस्करी से जुड़े 15 अभियुक्त भागने में कामयाब रहे थे। सीरिया में एक सैन्य हवाई अड्डे पर जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। मरने वालों में अधिकतर सैनिक और सरकार समर्थित लड़ाके शामिल हैं। एक कार्यकर्ता ने बताया है कि यह धमाका होम्स सेंट्रल प्रांत में स्थित शायरत एयरबेस पर हुआ। धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।